पहाड़ और मेरा बचपन। उधमपुर में 2 साल के छोटे भाई की मौत और पिता का थोड़ा पगला जाना। अपने छोटे भाई के देहांत के बारे में बताने से पहले मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहता हूँ जिसने मेरे बालमन को भगवान का इम्तिहान लेने को मजबूर किया। हुआ यह कि माँ ने मेरे लिए एक नई चप्पल खरीदी थी, बाटा की चप्पल। उन दिनों हमारे लिए बाटा से बड़ा कोई और ब्रांड न था, सो जाहिर है चप्पल महंगी थी। उस दिन नदी में बाढ़ आई हुई थी, पर बाढ़ में भी मैं घर वालों को चकमा देकर वहीं पहुंचा हुआ था। नदी में खेलते हुए अचानक मेरे एक पैर की चप्पल फिसल कर निकल गई और वह पानी में बहती हुई मुझसे दूर जाने लगी। मुझे काटो तो खून नहीं। नई चप्पल भेजाने का मतलब था घर पर पहले माँ की डांट और फिर पिता की गर्दन पकड़ छाप कर रही पिटाई। यह सब मेरे बाल मन के लिए बर्दाश्त से बाहर था। डर के मारे मेरा कलेजा मुंह में आ गया। मैं नदी के साथ साथ भागने लगा। ऐसे कैसे मैं नई चप्पल को जाने दे सकता था। अब दृश्य देखें, नदी के गस मार कर बहते मटमैले पानी में एक चप्पल गोते खाते बीच बीच में दिखती गायब होती बही जा रही है और नदी के साथ साथ एक बच्चा रोते हुए दौड़ रहा है। वह दौड़ते हुए मन ही मन भगवान को पुकार रहा है क्योंकि पानी के बहाव को देखते हुए उसे लग रहा है कि चप्पल उसके हाथ से आज निकलने वाली है। जितना वह चप्पल के बह जाने के बारे में सोचता उतना उसे माता पिता के हाथ पिटाई का डर सताने लगता और भगवान के लिए उसके दिल में उठ रहा आर्तनाद उतना ही तेज हो जाता। नौबत यहाँ तक आ गई कि उसने भगवान के अस्तित्व को ही चुनौती दे दी। अगर तू वाकई है और इस दुनिया को चला रहा है तो मेरी चप्पल वापस दिला कर दिखा। अगर चप्पल बह गई तो मैं यही मानूंगा कि तू है ही नहीं। भगवान के लिए कठिन घड़ी थी। वह जैसे उस 8 साल के रोते हुए बच्चे की निराशा को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद अंततः चप्पल बीच में आए एक बड़े पत्थर के साथ लगे एक झाड़ में अटक गई। मैंने उसे थोड़े प्रयास के बाद सफलतापूर्वक नदी से के बाहर खींच लिया। मैंने आसमान की ओर नज़र उठाकर डबडबाई आँखों से भगवान को धन्यवाद दिया कि तूने मुझे पिता की मार पड़ने से बचा लिया। उस दृश्य का कोई गवाह नहीं था आसपास, पर वह दृश्य जिसमें एक बालक अपनी नदी से निकाली गई चप्पल को हाथों में भींचे आसमान की ओर देखते हुए भगवान को धन्यवाद दे रहा है, मेरी स्मृति की नदी में हमेशा सतह पर ही तिरता रहा जब तक मुझे याद आता हुआ। अब मैं अपने छोटे भाई भीम के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने हाल फिलहाल उसे याद नहीं किया, पर ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने उसकी मृत्यु की बाबत माँ से कई सवाल पूछे। 7-8 साल की उम्र में वह मेरे लिए ऐसे खिलौने जैसा था जिसके बिना मैं जी नहीं सकता था। मैं उसे अक्सर अपनी पीठ पर उठाकर घुमाता रहता। मुझे उसके छोटे छोटे गालों से अपने गाल सटाने में भी बहुत आनंद आता। शाम को कई बार मैं उसे अपने घर के पीछे की हरी घास से पटी एक समतल जगह पर ले जाता जहाँ बड़ा भाई और छोटी बहन भी होते और हम तीनों ही उसके साथ खेलते। तीनों में उसे उठाने की होड़ लगी रहती। ज़्यादातर मेरी छोटी बहन उसे अपने सीने से चिपकाए घूमती रहती थी। उधमपुर में भीम 2 साल का था। मैं उसकी आँखों की निश्चलता कभी नहीं भूला। उसके साथ खेलने के दृश्यों के अलावा मुझे उसकी मृत्यु के पहले का दृश्य हमेशा याद रहा। रात का समय था, मैं सोया हुआ था। पर रजाई ओढ़कर मुझे गर्मी लग रही थी, शायद इसलिए मेरी नींद बीच बीच में उचट रही थी। ऐसे ही एक बार जब नींद उचटी तो मैंने आँख खोलकर देखा, माँ हीटर के सामने भीम को गोद में लेकर बैठी हुई थी। मैंने उनींदी आँखों से ही माँ को देखा और फिर सो गया। अगली बार मेरी नींद माँ के रुदन से खुली। माँ अब भी वहीं हीटर के सामने बैठी हुई थी और भीम उसकी गोद में ही था, पर माँ चीखते हुए रो रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसे रोका न गया तो वह भीम को लिए हुए हीटर पर गिर जाएगी। इसके बाद के सारे दृश्य बहुत बेतरतीब हो जाते हैं। आस पड़ोसियों की भीड़, सफ़ेद कपड़े में लपेटा गया छोटे भाई भीम का शव, मेरा स्कूल के रास्ते पर पैदल चलते हुए सोचना कि भीम आखिर कहाँ गया, उसकी मृत्यु की खबर कक्षा के बच्चों तक भी पहुंच जाना, उनके बीच की फुसफुसाहट, क्लास टीचर का मुझसे पूछना, तुम्हारा भाई क्या नहीं रहा, कितने साल का था। मुझे याद नहीं कि उस छोटी सी उम्र में अपने सबसे प्रिय खिलौने के खो जाने के दुख को मैंने कैसे सहा। यह जरूर याद है कि उधमपुर छोड़कर जब हम पिथौरागढ़ गए तो मैंने माँ से सैकड़ों बार पूछा कि भीम की मृत्यु कैसे हुई। उसने मुझे बताया कि उसे डबल निमोनिया हो गया था, पर माँ की यह बात कभी मेरे गले नहीं उतरी। मुझे तब भी लगता था और आज भी लगता है कि कोई भी बीमारी हो, अगर उसका ठीक से इलाज किया जाए तो वो ठीक हो जाती है। अब मैं तर्कसंगत होकर सोचता हूँ तो समझ आता है कि भीम की मृत्यु में हमारी गरीबी की भी भूमिका थी। उधमपुर हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छी जगह नहीं साबित हुई, सिवाय इसके कि मैं नदी नाले में जाकर मछलियाँ पकड़कर लाता था। वहाँ हमारा जीवन कष्टदायक था। कष्टदायक इसलिए क्योंकि माता पिता बहुत तकलीफ में थे। मेरे पिताजी सेना में हवलदार यानी एक नॉन कमीशन ऑफिसर थे, पर शुरू से उनकी कोशिश रही थी कि वे ऑफिसर बने। इसके लिए उन्होंने 7 बार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की लिखित परीक्षा पास की, पर 7ों बार वे इंटरव्यू में रह गए। अफसर बनने की उनकी इतनी ज़बरदस्त इच्छा थी कि जब उन्हें लगा कि उनकी इच्छा कभी हकीकत में नहीं बदल पाएगी तो उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ाने लगा। उधमपुर में ही पहले पहल उन्होंने दीवारों से बातें करना शुरू किया। वे अपने में ज़्यादा खोए रहने लगे। वे थोड़ा कम सांसारिक हो गए। बच्चों से भी वे बातें नहीं करते थे। उनकी दोस्ती सिर्फ और सिर्फ शराब से थी। आज समझ आता है कि भाई भीम की मृत्यु के लिए पिताजी की मानसिक स्थिति भी कुछ हद तक जरूर जिम्मेदार रही होगी, नहीं तो निमोनिया इतनी घातक बीमारी भी नहीं कि उससे किसी को बचाया ना जा सके। मुझे तब तो समझ में नहीं आया जब मैं पिताजी को दीवारों से अकेले ही बात करते हुए देखता था, पर बड़े होने के बाद मैंने सड़कों चौराहों पर बहुत सारे पागलों को अकेले बातें करते हुए सुना तो मुझे पिता जरूर याद आए। यह मेरे लिए कम हैरानी की बात नहीं थी कि उस तरह घंटों दीवारों से बात करने वाले पिता, जिन्होंने बच्चों की परवाह किए बिना फौज की जमी जमाई नौकरी अचानक छोड़ दी और परिवार को बिना किसी योजना के सीधे पिथौरागढ़ उठाकर ले आए और फिर अगले 2 साल तक बेरोजगार रहे, वे पागल हुए क्यों नहीं। यह सब लिखते हुए इस संयोग पर भी ध्यान जा रहा है कि उनके पुत्र के रूप में मैंने अंततः उनकी सेना में अफसर बनने की इच्छा पूरी की। और इस पर आप क्या कहेंगे कि मैंने भी उनकी तरह ही बिना किसी योजना के अचानक सेना की नौकरी छोड़ दी, और यह भी कि पिता की तरह ही मेरी आखिरी पोस्टिंग उधमपुर ही थी।